ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशताविने श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता का अंतिम अध्याय कंक्लूजन संन्यास की सिद्धि इस अध्याय का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये अध्याय भगवद गीता का सबसे लंबा अध्याय है। उसका कारण भी है कि भगवद गीता में जितने भी योग हमने डिस्कस किए हैं, कर्म योग ज्ञान योग भी डिस्कस किया था, तो सभी के सभी योगों योग पद्धति का जो सार था वो इस अध्याय में दिया गया है। और साथ साथ भक्ति योग की सुपीरियरिटी भी इसमें दी गई है। और अंत में अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर संजय और धृतराष्ट्र के बीच का वार्तालाप होकर यह अध्याय कंप्लीट होता है। तो टोटल 78 श्लोक हैं, 78 श्लोक हैं इस चैप्टर में। और हम देखेंगे कि किस तरह से हम उनको कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 17 जो था वो कंप्लीट हुआ था। श्रद्धा के बिना जो भी वस्तुएं की जाती हैं वो असत कहलाती हैं और दोनों जन्म, ये जन्म अगले जन्म दोनों में दोनों व्यर्थ हो जाते हैं अगर किसी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं है। हमने ये भी देखा था कि श्रद्धा जो है वो सत्वगुण के द्वारा प्राप्त होती है, सत्वगुण का लक्षण है श्रद्धा, इस तरह से हमने देखा था। तो अर्जुन 18 अध्याय प्रारंभ होता है अर्जुन का प्रश्न के द्वारा प्रारंभ होता है। अर्जुन दो शब्दों का मीनिंग जानना चाहते हैं, सन्यास और त्याग। सन्यास मतलब सन्यास आश्रम और त्यागमय जीवन। हालांकि देखने में दोनों समान ही लगते हैं, परंतु अर्जुन उसको भगवान से क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ और हे केसी निसूदन, भगवान का एक नाम है केसी निसूदन, क्योंकि भगवान ने केसी नामक राक्षस का वध किया था जो कि वृंदावन में आया था। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि मैं सन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ और त्याग का उद्देश्य जानना चाहता हूँ। ओरिजिनली भगवद्गीता के साथ भगवद्गीता 17 अध्यायों में उसके कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं। 18वां अध्याय पिछले 17 अध्यायों के में जो हमने डिस्कस किया उसका कॉम्प्लीमेंट है, उन सबका संक्षेप में बताया गया है। हर अध्याय में भगवान बताते हैं कि भगवान की सेवा करना ही परम धर्म है। पहले हमने कर्म योग देखा, उसके बाद भक्ति योग, फिर ज्ञान के द्वारा भक्ति की प्राप्ति, इस तरह से 17 अध्याय में हो जाता है भगवद गीता के सिद्धांत। तो हर जगह पे भगवद गीता में भक्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। जैसे एक श्लोक आता है, हरि सर्वत्र गीयते, संसार के सारे शास्त्रों में भगवान विष्णु का ही ग्लोरिफिकेशन दिया है, चाहे वो वेद हो पुराण हो, कहीं पे साक्षात रूप से दिया है, कहीं पे साक्षात रूप से नहीं दिया है। तो शुरू में श्लोक नंबर 1 से लेके 12 तक डिस्क्रिप्शन आता है, शुरू के 6 अध्यायों का जो सार था, कर्म योग का जो सार था। उसके बाद 13 से लेके 18 तक ज्ञान का जो सार था वो आता है, ज्ञान योग का। और उसके बाद 19 से लेके 40 तक तीन गुण जो हमने डिस्कस किए थे वो और डिटेल में आते हैं। उसके बाद 41 से लेके सकाम कर्म योग से लेके भक्ति तक कैसे पहुंचते हैं। और उसके बाद मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे ज़्यादा गुह्यतम ज्ञान आता है, सुबह भगवान के शुद्ध भक्त बनना। और उसके बाद भगवद गीता को जो प्रचार करते हैं और जो पढ़ाई करते हैं उसको क्या फल मिलता है। उसके बाद अर्जुन का सम्मोह दूर हो गया है, अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। और लास्ट में संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे अर्जुन है, वहाँ पे विजय हमेशा नेचुरली रहेगी। इस प्रकार से यह अध्याय का रूपरेखा है, बैकग्राउंड है। तो अर्जुन का पहला प्रश्न जो है, त्याग और संन्यास के बीच का अंतर, उसका मीनिंग है कि व्यक्ति को कर्म योग में हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। अर्जुन ने 2 बार ये प्रश्न पूछा था कि अपने कर्म के फलों को त्याग करना अच्छा है या कर्मों को ही त्याग करना अच्छा है, और भगवान ने इसका आंसर भी दिया था। हम जानते हैं कि भगवान ने बताया था कि कर्म के फलों का त्याग करना ज़्यादा अच्छा है क्या कर्मों का त्याग करने की बजाय, क्योंकि कर्मों का त्याग करना बहुत कठिन है। और हमने 6वें अध्याय में देखा था कि जो व्यक्ति योग की उच्च अवस्था में पहुंचता है वो कर्म का त्याग कर सकता है, नहीं तो कर्म का त्याग करना बहुत मुश्किल होता है। तो अर्जुन उसी प्रश्न को डिटेल में पूछ रहे हैं और भगवान फिर आगे उनके उत्तर बताएंगे। तो अध्याय 2 जिस प्रकार से समरी है, अध्याय 18 भी उसी तरीके से समरी है। अध्याय 2 अध्याय 18 दोनों का गोल जो है वो समान है कि वैराग्य की प्राप्ति करना और भगवान की दिव्य स्थिति को प्राप्त करना और भगवान की सेवा करना। केसी निषूदन का मीनिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। केसी राक्षस जो है वो हमारे हृदय में जो शंकाएं होती हैं, संदेह होते हैं, उसको प्रदर्शित करता है, और भगवान को केसी निषूदन बोला जाता है क्योंकि भगवान उस राक्षस का वध करते हैं। तो हमारे हृदय में जो भी डाउट हैं वो भगवान उन डाउट्स का वध करते हैं अगर हम भगवान की शरण लेते हैं। जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे बहुत सारे डाउट होते हैं कि आत्मा है कि नहीं और भगवान है कि नहीं, ये इस्कॉन वाले इस तरह से बोलते हैं, और गुरु प्रामाणिक होते हैं कि नहीं, क्या भरोसा शास्त्र सही है कि नहीं, बहुत सारे डाउट होते हैं। परंतु भक्ति में लगे रहने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान के धीरे धीरे सेवा करने से, भगवान के बारे में जानने से, हम देखते हैं सारे डाउट खत्म हो जाते हैं। जब मैं इस्कॉन में आया था मेरे भी बहुत सारे अलग अलग प्रश्न थे कि ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है, तो धीरे धीरे उन प्रश्नों के उत्तर मिलते गए मिलते गए। फिर मुझे लगा कि हाँ, इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। अगर आज मुझे नहीं भी मिल रहा है तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो मिलता जाएगा। आप लोग भी इसको फील करेंगे कि भक्ति की प्रोसेस में लगे रहने से भगवान स्वयं सारे डाउट को दूर कर देते हैं हमारे हृदय में से। तो भगवान अभी बताना चालू कर रहे हैं कि संन्यास किसको बोला जाता है। संन्यास की डेफिनेशन भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भौतिक इच्छा पर आधारित जो कर्म है, ऐसे कर्म जो कि भौतिक कार्यों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, उन कर्मों को परित्याग कर देता है तो उसको संन्यास बोला जाता है। और कर्मों के फल के त्याग को त्याग बोला जाता है। दैट मीन्स संन्यास आश्रम का मतलब है भौतिक भौतिक इच्छा पर आधारित जो कर्म है उन के परित्याग करने को संन्यास बोला जाता है, और कर्म के फलों को हमेशा त्याग करने को त्याग बोला जाता है। बहुत छोटा अंतर है, एक्चुअली अंतर क्लियर है परंतु कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। संन्यास आश्रम का मतलब है भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों को नहीं करना है, और त्याग का मतलब है कि कर्म के फलों को त्याग कर देना है। कर्म को कर सकते हैं पर त्याग, कर्म के फल को हम स्वीकार नहीं करेंगे, कर्म के फल को भगवान को देंगे। तो ये दोनों में अंतर है, त्याग और संन्यास में। कुछ लोग बोलते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को त्याग देना चाहिए। सकाम कर्मों को त्यागने के लिए कई लोग बोलते हैं इस तरह से। अर्जुन भी तो वही सोच रहे हैं इसमें कि सकाम कर्मों को छोड़ के मैं जंगल में चला जाता हूँ। तो कुछ विद्वान बोलते हैं कि सकाम कर्मों को त्याग करना चाहिए क्योंकि वो दोषपूर्ण होते हैं। सकाम कर्म कभी ठीक नहीं होते हैं, दोषपूर्ण होते हैं, इसलिए सकाम कर्मों को त्याग कर देना चाहिए। कुछ विद्वान इस तरह से बताते हैं, भगवद गीता में भगवान ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। और कुछ अन्य विद्वान बोलते हैं कि कुछ ऐसे कर्म जो हमें शुद्धि को प्रदान करते हैं उनको कभी त्याग नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यज्ञ, दान, तपस्या, इनको त्याग नहीं करना चाहिए। भौतिक कर्मों को त्याग करने के लिए लोग बोलते हैं, परंतु कुछ अन्य विद्वान बोलते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या, इनको कभी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। अगले मतलब 5वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि यज्ञ, दान, तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञो दानम तपस्यो पावनानि मनीषिणम, क्योंकि व्यक्ति किसी भी अवस्था में है, यज्ञ, दान और तपस्या को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान, तपस्या इतने शक्तिशाली हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों, महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। पावनानी मनीषिणाम, मनीषिणाम का मतलब महात्मा। तो महात्मा लोग भी जब यज्ञ, दान, तपस्या करते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए यज्ञ, दान और तपस्या को किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये चीज़ गलत है कि सकाम कर्म दोषपूर्ण होते हैं इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। भगवान उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि सकाम कर्मों को छोड़ना चाहिए। भगवान बता रहे हैं कि कामों को करके उसमें फल की आसक्ति नहीं रखना चाहिए, फल की आशा के बिना हमें काम संपन्न करना चाहिए। अगर इन कामों को केवल कर्तव्य मान के करेंगे और उसके फल से आसक्त नहीं होंगे तो हम ज्यादा अच्छी स्थिति में है संन्यास आश्रम की बजाय, समस्त कर्मों का परित्याग करने की बजाय हमारे जो ऑक्यूपेशनल कर्म है, जो कि शास्त्र विहित कर्म है, वो कर्म करके फल की आसक्ति छोड़ देना चाहिए, केवल कर्तव्य के जैसा कर्म करना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कि वो ज्यादा सेफ है और मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छा है। यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, परंतु मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। और जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो वो यज्ञ करना चाहिए, जैसे हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम करना भी यज्ञ है। इन यज्ञों इस यज्ञ को नहीं छोड़ सकते, नहीं तो हम आध्यात्मिक जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भगवान से संबंधित यज्ञों को करना चाहिए, क्योंकि वो हमें शुद्ध बनाते हैं। और फिर भगवान बताते हैं निर्दिष्ट कर्तव्य वो कभी नहीं त्यागना चाहिए। निर्दिष्ट कर्तव्य मतलब ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ब्राह्मण के ये 6 कर्तव्य माने जाते हैं। वेदों का पठन मतलब स्वयं पढ़ना, वेदों को पठाना मतलब दूसरों को पढ़ाना, और स्वयं यज्ञ करना दूसरों को यज्ञ संपन्न कराना, दूसरों को दान देना और दान स्वीकार करना, ये ब्राह्मण के 6 धर्म होते हैं। इसी तरह से क्षत्रिय के धर्म होते हैं सौर्यम तेजो धृतु दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम, ये क्षत्रियों के धर्म होते हैं। शायद इसी अध्याय में आएंगे, इस अध्याय में ही आना चाहिए, 42-43-44 श्लोक में। तो इस प्रकार के सभी के जो निर्दिष्ट कर्तव्य हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, अगर सभी लोग उसको करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इन कर्तव्यों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। इन कर्तव्यों को करते समय भी हमें अनासक्त रहना चाहिए, फल की आशा नहीं करना चाहिए। भगवान की खुशी के लिए ये कर्तव्य करेंगे तो व्यक्ति कभी भी संसार में नहीं फंसता है। इस तरह से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, और ये इसको भगवान समझाते हैं और अगले 2-3 श्लोकों में समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने नियत कर्मों को ही त्याग देता है, जो कर्म उसको करना चाहिए परंतु लेजीनेस के कारण, आलस के कारण उसको त्याग देता है कि कौन करेगा, ये सब सोच के त्याग देता है, तो व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में माना जाता है। तो सतोगुण में जो व्यक्ति स्थित होता है वो व्यक्ति ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है ना शुभ कर्म में फंसा रहता है, वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। इस प्रकार से सत्वगुण का व्यक्ति कहलाता है, क्योंकि कर्मों का त्याग करना किसी भी देहधारी जीव के लिए संभव नहीं है, इसलिए जो कर्मों के फलों का त्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। ये भगवान ने क्लियरली यहाँ बताया कि वास्तव में कर्मों को त्याग करना किसी के लिए संभव नहीं है। 3rd अध्याय में भी भगवान ने ये चीज़ बोला था, कर्मों को त्याग करना बहुत कठिन है, तो जो कर्म फलों को त्याग करता है उसको वास्तविकता में त्यागी बोला जाता है। जो त्यागी नहीं है उसको कर्मफल मृत्यु के बाद भोगने पड़ते हैं। कुछ कर्मफल उसके इच्छा के अनुसार होते हैं, कुछ उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं, कुछ मिले जुले होते हैं। ये कर्मफल उस व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं जो कि कर्म के फलों का त्याग नहीं करता है। परंतु जो त्याग कर चुके हैं, सन्यासी हैं, उनको इन कर्म के फलों को नहीं भोगना पड़ता है। तो यहाँ तक भगवान कर्म सेक्शन बता रहे हैं, जो कि शुरू के 6 अध्याय में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद अगले 6 श्लोकों में भगवान ज्ञान का जो सेक्शन हमने डिस्कस किया उसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। जैसे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें बताते हैं, पंचयितानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांत प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। भगवान बता रहे हैं कोई भी कर्म को पूरा करने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, 5 कारण हैं। हर कर्म के करने के 5 कारण हैं, केवल एक ही कारण नहीं होता है। ये 5 कारण कौन कौन से हैं? अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। कोई भी कर्म करने के लिए 5 कारण है। अधिष्ठानम, अधिष्ठानम मतलब कर्म का स्थान, कर्म का स्थान मतलब शरीर, क्षेत्र, क्षेत्र हमने 13वें अध्याय में पढ़ा था, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का मतलब था शरीर, क्षेत्रज्ञ का मतलब था आत्मा। तो अधिष्ठानम शब्द यहाँ पे शरीर के लिए आया है, शरीर के अंदर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल मिलता है, इसलिए कर्ता शब्द जो है वो आत्मा के लिए आया है। आत्मा ज्ञाता भी है, आत्मा कर्ता भी है, आत्मा को क्षेत्रज्ञ भी बोला जाता है। तो यहाँ पे अधिष्ठान मतलब शरीर, कर्ता मतलब आत्मा, करणम, करणम मतलब इंद्रियां। आत्मा करता है परंतु इंद्रियों के द्वारा वो किसी कार्य को संपन्न करता है, तो करणम मतलब इंद्रियां। और विविधाश्च पृथक, अलग, बहुत बहुत प्रयास, इंडेवर्स, ये 4th कारण है। और 5वां कारण है परमात्मा। तो कौन कौन से 5 कारण हुए कर्म के, ये याद रखेंगे तो आप जीवन में हमेशा शांति प्राप्त करेंगे। 5 कारण है कर्म के, अधिष्ठान मतलब शरीर, तथा कर्ता, कर्ता मतलब आत्मा, करणम च पृथक विधा, करणम मीन्स विभिन्न प्रकार के इंद्रियां, उसके बाद विविधाश्च पृथक चेष्टा, अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप कार्य को संपन्न करने के लिए चेष्टा करना, प्रयत्न करना। और पांचवा है दैवम, दैवम मतलब परमात्मा। तो ये पांच वस्तुएं हैं जिसके कारण संसार में कार्य होता है। इन पांच में भी सबसे इंपॉर्टेंट है परमात्मा। अगर परमात्मा को हटा दिया जाए तो बाकी चारों वस्तुएं जीरो हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा के परमिशन से ही संसार में कार्य किया जा सकता है। तो शरीर वांग मनोभिरियत कर्म प्रारभते नरः, मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो भी उचित अनुचित कर्म करता है इन पांच कारणों के फलस्वरूप होता है। तो जो भी कार्य होता है संसार में वो इन पांच कारणों के फलस्वरूप ही किया जाता है। चाहे मनुष्य शरीर अपने शरीर मन या वाणी से जो भी करता है वो इन पांच कारणों के कारण ही होता है। उचित या अनुचित जो भी सब जो भी कार्य है उसमें इन्हीं पांच चीज़ें होती हैं। इन पांचों को जो नहीं मानता है केवल अपने आप को कर्ता समझता है, उसको मूर्ख बोला जाता है। भगवद गीता बोलते हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। तो जो इन पांच कारणों को नहीं जानता है केवल अपने आप को सोचता है कि मैंने काम किया है, वो व्यक्ति को भगवद्गीता में मूर्ख बताया गया है। मूर्ख भी बताया गया है और दूसरा उसके लिए उपयोग किया गया है दुर्मति। उसकी मति ज्यादा अच्छी नहीं है, वो ठीक तरीके से नहीं सोच पाता है, अपने आप को ही सोचता है कि वही सब कर रहा है। जबकि इन पांचों में परमेश्वर सबसे इंपॉर्टेंट है, परमात्मा। उसके अलावा भी चार हैं, अधिष्ठान, कर्ता, करण और चेष्टा, ये चार वस्तुएं हैं। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ही केवल कर्म हूँ, मैं ही केवल करता हूँ, वो मूर्ख है। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र के रूप में बैठे हैं और कर्मों का संचालन कर रहे हैं। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण तो परमात्मा स्वयं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कर्म के चार भौतिक कारणों को ना देखे परंतु सक्षम कारण परमात्मा को देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता अपने आप को ही कर्ता समझता है। जो भगवान को नहीं समझता है, भगवान को नहीं जानता, उसको लगता है कि मैं ही सारा काम कर रहा हूँ। परंतु जो इस चीज़ से नहीं फंसा रहता है, जिसको ये ज्ञान पता रहता है कि भगवान भी कार्य हैं, पांच फैक्टर हैं, वो इस संसार में अहंकृतो, कभी उसको अहंकार नहीं आता है, उसकी बुद्धि भी नहीं बंधी रहती है, इसलिए संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता है वो, और वो अपने कर्मों से भी नहीं बंधता है। तो ये कैसे होता है? अगर कोई परमात्मा के आदेश के आधार पर ही कार्य कर रहा है तो उसको कर्म का फल नहीं मिलता है। जैसे भगवद गीता में अर्जुन ने भी बहुत सारे लोगों को मारा, दुर्योधन ने भी बहुत लोगों को मारा। अर्जुन ने ज़्यादा लोगों को मारा क्योंकि अर्जुन बड़े योद्धा थे और दुर्योधन के पक्ष में ज़्यादा लोग थे। परंतु अर्जुन को ज़्यादा लोगों को मारने के बाद भी भक्ति मिल गई और दुर्योधन को कम लोगों को मारने के बाद भी उनकी बुरी दशा हुई, मृत्यु को प्राप्त हुए। तो क्योंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण जो कि स्वयं परमात्मा है उनके आदेश के अनुसार कार्य किया, धर्म युद्ध में भाग लिया, भगवान कृष्ण की इच्छा से भाग लिया, इसलिए अर्जुन को लोगों को मारने के बाद भी उनको मारने का फल नहीं मिला, उनको भक्ति प्राप्त हुआ। जो जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, उनकी जिनकी बुद्धि बंधी नहीं है, वो इस संसार में मारते हुए भी नहीं मारते हैं और अपने कर्मों से भी नहीं बंधे रहते हैं। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक अपनी इच्छा से वध कर दे तो उसे न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण है कि प्रभुपाद जी भी ये उदाहरण उपयोग करते थे कई बार, कि अपने सीनियर के आदेश के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी को मारता है, वध कर देता है सेना में, आर्मी में, तो उसको कोई दंड नहीं मिलता है। परंतु वो ये व्यक्ति घर जाके किसी को मार दे तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। इसी तरह से जो बैंक में काम करते हैं तो हजारों लाखों नोट गिन सकते हैं वो बैंक के लिए, परंतु उसमें से एक नोट भी निकाल के अपनी जेब में रख लिया तो व्यक्ति फंस जाता है। तो अगर हम भगवान के लिए करते हैं तो कोई समस्या नहीं, अगर केवल अपने लिए करते हैं तो फिर हम फंस जाते हैं। इसके बाद आता है ज्ञानम गेयम परिज्ञात त्रिविधा कर्म चोदना, कर्णम कर्म करते थे त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञान मतलब ज्ञान, आप सभी जानते हैं। ज्ञेय मतलब ज्ञान का लक्ष्य, किसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जैसे हमारे लिए ज्ञेय कौन है? कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। परिज्ञाता मतलब जानने वाला। ये तीनों की तीनों कर्म को प्रेरणा देते हैं, और इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के घटक हैं। तो इसमें से छह चीज़ें हैं। सबसे पहले कर्म करने के लिए कौन इंस्पिरेशन देते हैं? तो उस व्यक्ति के मन में जो हृदय में जो ब्रेन में जो ज्ञान होता है या शास्त्र से जो ज्ञान प्राप्त करता है वो ज्ञान, और उस ज्ञान के द्वारा किसको प्राप्त करना है वो, उस ज्ञान का प्राप्त करने वाला। तीन तीन लोग कर्म करने के लिए इंस्पिरेशन का कार्य करते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें कर्म को करने में मदद करती हैं? इंद्रियां, कर्म और कर्ता, ये कर्म को करने में मदद करते हैं। इसलिए भगवान अभी 19वें श्लोक से लेके बहुत लंबा, ऑलमोस्ट 40 40 42 श्लोक तक, अगले 20 श्लोकों तक भगवान बताते हैं कि इंद्रियां वास्तविकता में तीन गुणों के द्वारा प्रभावित होती हैं। इसलिए हम संसार में जो काम करते हैं वो भी तीन गुणों से प्रभावित होता है। तो तीन गुणों के आधार पे ज्ञान, कर्म, कर्ता के तीन तीन भेद हैं। तीनों को डिवाइड किया गया, ज्ञान को, कर्म को और कर्ता को अलग अलग भेदों में डिवाइड किया गया, और वो भगवान अगले 20 श्लोकों में बता रहे हैं। जैसे 19 से 22 तक भगवान बताते हैं व्यक्ति का ज्ञान तीन गुणों के आधार पर होता है, व्यक्ति के क्रियाएं, कर्म तीन गुणों के आधार पर होता है, और उसकी मन में जो विचार होते हैं वो तीन गुणों के आधार पर होते हैं, उसकी उसकी चेष्टा, डिटर्मिनेशन तीन गुणों के आधार पर होता है, उसका सुख भी तीन गुणों के आधार पर होता है। तो संसार में सारी वस्तुएं इन तीन गुणों के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, ये भगवान यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो अगर 20 से लेके फिर 19 से ही वास्तविकता में 20 से लेके 19 से लेके 40 तक हम देखते हैं तीन मोठ तीन गुण किस प्रकार से पूरे सभी वस्तुओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे 20वें श्लोक में बताया गया है, अभी तक हमने डिस्कस किया कर्म योग सेक्शन, उसके बाद ज्ञान योग सेक्शन हमने डिस्कस किया जिसमें हमने पांच कारणों को देखा, और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किस प्रकार से ये कार्य संसार के गुणों के द्वारा होते हैं। तो सात्विक कार्य, सात्विक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो कि हर जगह आध्यात्मिक प्रकृति, मतलब हर जगह परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, उसको सात्विक ज्ञान बोला जाता है। जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, या जल जंतु हो, या पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त करता है। सभी जीवों में एक प्रकार की आत्मा है, परंतु अलग अलग कर्मों के आधार पर उसके शरीर भिन्न भिन्न हैं। आत्मा की क्वालिटी समान होती है, आत्मा अलग अलग इंडिविजुअल है, परंतु क्वालिटेटिवली सभी समान है, सच्चिदानंद है, और परमात्मा सभी के अंदर समान होते हैं। तो जो इस प्रकार से आध्यात्मिक तत्व को देख पाता है लोगों सभी के अंदर, वो सात्विक ज्ञान वाला कहलाता है। और जो विभिन्न भिन्न विभिन्न शरीरों में अलग अलग जीवों को देखता है वो राजसी ज्ञान वाला कहलाता है। यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान कहलाता है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है, अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाली आत्मा नहीं होती, आत्मा पृथक आत्मा ना रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर से परे कोई पृथक आत्मा नहीं, जो इस तरह से सोचते हैं उनका ज्ञान रजोगुण में होता है। जो केवल ये जानते हैं कि शरीर अलग अलग है, शरीर के अंदर आत्मा नाम से कुछ नहीं है, इनको बोला जाता है रजोगुण में उनका ज्ञान है, उनका ज्ञान ज्यादा शुद्ध नहीं है, रजोगुणी ज्ञान बोला जाता है। तीसरे प्रकार के लोग जो जिसको पता ही नहीं कौन सा कार्य करना चाहिए, किसी भी कार्य को वो कोई भी कार्य करता है, अति तुच्छ, इवन पाप का कार्य भी करता है तो भी उसको बोलता है कि बहुत अच्छा ज्ञान है, क्योंकि उसको उसने कभी शास्त्रों को नहीं पढ़ा है तो उसको सच्चाई का पता नहीं होता है। इसलिए कोई भी गिरे हुए कार्य को भी वो बहुत ऊंचा कार्य मान के उसमें डूब जाता है और बोलता है कि ये बहुत अच्छा कार्य है, और सत्य को नहीं जानता है। ऐसे व्यक्ति को तामसी बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जिनके लिए धन ही सबसे बड़ा है, मनी इज स्वीटर देन हनी, धन ही उनके लिए भगवान है, वो धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उनके लिए ज्ञान क्या है कि शरीर को संतुष्ट रखना ज्ञान कहलाता है बस, और उसके आगे कुछ नहीं है, वो आध्यात्मिक सत्य के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। इसी तरह से कुछ पशुओं का ज्ञान जो है, जानवरों का ज्ञान क्या है, खाने में, सोने में, रक्षा करने में, वो मैथुन करने में लगा रहता है, उनको लगता है ये जीवन का स्वभाव है। हमने देखा था 16वें अध्याय में कि असुर लोग क्या सोचते हैं कि ये संसार जो है ये काम भावना से निकल के आया है, भोग की इच्छा से निकल के आया, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये सब तामसी ज्ञान कहलाता है, जो कि किसी भी ज्ञान को सबसे ऊंचा मान के उसको प्रमोट करते हैं। इस प्रकार से तीन प्रकार के ज्ञान हैं। उसके बाद आता है तीन प्रकार के एक्शन, ऐसे कर्म जो कि नियमित हैं, और आसक्ति राग और द्वेष और कर्म फल की इच्छा के बिना, कर्म फल की इच्छा के बिना जो कर्म किया जाता है वो सत्वगुण में कहलाता है। कर्म फल की इच्छा के बिना कर्म करना मतलब विभिन्न आश्रमों में जाके कार्य करना, वर्णाश्रम के आधार पर जीवन व्यतीत करना। वर्णाश्रम मतलब हर व्यक्ति के अलग अलग ड्यूटी हैं, वह ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, सभी की अलग अलग ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज के आधार पर कार्य करना वर्णाश्रम के आधार पर कार्य करना कहलाता है। तो अगर कोई कर्म फल की चाह के बिना अपने आश्रम में रह के कार्य करता है तो सात्विक कार्य कहलाता है। और उसके अलावा राजसिक कार्य कौन सा कहलाता है कि अगर कोई व्यक्ति केवल फल की इच्छा के साथ कर्म करता है, उसको लगता है कि मुझे जो मैं कर रहा हूँ उसका फल मुझे भुगतना है, तो उस फल की इच्छा के साथ जो कर्म करता है और अहंकार के साथ कर्म करता है, फल की इच्छा भी है साथ में उसको अहंकार भी है कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, इस प्रकार से सोच के जो बहुत मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है अहंकार के साथ और फल की इच्छा के साथ, वो रजोगुण का क्रिया कहलाती है। और जो व्यक्ति शास्त्र को नहीं मानता है और केवल संसार में भोग के लिए कर्म करता है और दूसरों का दुख भी पहुंचाता है, हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम, लोगों को हिंसा करता है अपने सुख की प्राप्ति करने के लिए, दूसरों को मारता है, दूसरों को परेशान करता है, ऐसा जो क्रियाएं हैं वो तामसी कहलाती हैं। इसके बाद जो कर्ता कर्म और कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है वो सुख दुख से विचलित होने वाला है और राजसी कहलाता है। और जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संपर्क के बिना, बिना अहंकार के और संकल्प के साथ उत्साह के साथ अपना कर्म करता है और सफलता असफलता दोनों में समान रहता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है। सात्विक कर्ता का डेफिनेशन है कि वो व्यक्ति भौतिक गुणों के प्रभाव में नहीं आके, भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना कार्य करता है, उसमें कर्म करते समय अहंकार भी नहीं होता है परंतु कर्म करते समय उत्साह बहुत होता है और बहुत डिटर्मिनेशन होता है, मतलब दृढ़ संकल्प और उत्साह के साथ वो कार्य करता है और सिद्धि सिद्धियों निर्विकार है। अगर काम करने के बाद उसको सिद्धि मिलती है नहीं मिलती है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका रूल होता है डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जो इस प्रकार से कार्य करता है वो सात्विक कर्ता कहलाता है। और तामसी कहलाता है जो शास्त्रों के विरुद्ध, इन जनरल हम समझ सकते हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है और जिसके अंदर लोगों को छलने की इच्छा होती है, आलसी होता है, दूसरों को अपमान करने में एक्सपर्ट होता है और काम करने में बहुत पोस्टपोन करता है, आज नहीं तो काल कर, काल नहीं तो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करना है, अभी तो जीना है बस, जो इस तरीके से सोचते हैं उनकी क्रियाएं तामसी होती हैं, शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध। भौतिकतावादी बहुत हठी होते हैं, हठी मतलब कोई चीज़ में अड़ जाते हैं, कपटी, अंदर बाहर उनका अंदर से कुछ और गलत सोचते हैं बाहर से अच्छा दिखाते हैं, और दूसरों का अपमान करने में बहुत निपुण होते हैं। ये लोग आलसी भी होते हैं, हमेशा निराश जैसे रहते हैं और हमेशा टालते रहते हैं, इन लोगों को, इनकी कर्ताओं, इनकी क्रियाओं को तमोगुण बोला जाता है। अभी कौन सी बुद्धि सात्विक कहलाती है ये भगवान डिस्क्राइब करने वाले हैं। ऐसी बुद्धि जो कि हमें बताती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए, और कौन सा कार्य संसार में बांधता है कौन सा कार्य हमें संसार से मुक्त करता है। जिस बुद्धि से ये चीज़ें पता चलती हैं, ये छह चीज़ें मेनली, संसार में करने का क्या कार्य है, नहीं करने का क्या कार्य है, और किस कार्य से डरना चाहिए किस कार्य से नहीं डरना चाहिए, किस कार्य से संसार में बंधन मिलता है कौन से कार्य से संसार में मोक्ष मिलता है, जो बुद्धि ये इन वस्तुओं को जानती है उसको सात्विक बुद्धि बोला जाता है। और जो बुद्धि इनको नहीं जानती है उसको राजसी बोला जाता है। और तामसी बुद्धि किसको बोली जाती है, जो अधर्म को धर्म बोलता है, धर्म को अधर्म बोलता है और हमेशा गलत दिशा में काम करते हैं, उसको तामसी बुद्धि बोला जाता है। ये लोग, तामसी लोगों का सामान्य लक्षण होता है शास्त्रों की बातों को नहीं मानते हैं, उनके लिए शास्त्र की बात कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो ये विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ऐसी बुद्धि को तामसी बुद्धि बोला जाता है। इसके बाद भगवान बताते हैं संकल्प, किसी कौन किस व्यक्ति का संकल्प सात्विक होता है, किसका तामसिक राजसिक होता है, किसी का तामसिक होता है। तो संकल्प मतलब ऐसा संकल्प जो टूटे नहीं, अटूट संकल्प जो है, जैसे हमने वाव लिया कि 16 माला का जप करना है, तो अभी ये जो प्रतिज्ञा है ये टूटनी नहीं चाहिए, तब ये सात्विक प्रतिज्ञा कहलाती है। हम शपथ लेते हैं कि हम भगवान की सेवा करेंगे, ये दिव्य तपस्या है वास्तविकता में। तो इस प्रकार के संकल्प जो अटूट हैं और जो अचल होकर धारण किए जाते हैं और मन बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, ऐसे संकल्प को सात्विक, धृति सात्विक, सात्विक संकल्प बोला जाता है। जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ काम में लिप्त हो जाता है वो राजसी कहलाता है। ऐसी बुद्धि जिससे मोक्ष के बारे में नहीं सोच पाते। जो हमने 14वां अध्याय पढ़ा था तो हमने ये चीज देखा था उसमें कि व्यक्ति जो रजोगुण में व्यक्ति होते हैं वो धर्म अर्थ काम थोड़ा बहुत करते हैं परंतु मोक्ष की उनको इच्छा नहीं होती है, इसलिए वो इसी संसार में रह जाते हैं। वो ऊपर के लोकों में भी नहीं जा पाते हैं, या तो इसी संसार में रहते हैं या पशु योनि में चले जाते हैं। तो उनकी बुद्धि में धर्म अर्थ काम में लगे रहते हैं परंतु मोक्ष के बारे में नहीं सोच पाते हैं। और ऐसा संकल्प जिसके द्वारा व्यक्ति स्वप्न भय शोक विषाद और मोह, तामसी लोग ज़्यादा सोते हैं तो उनको स्वप्न भी बहुत सारे आते हैं, मतलब उनका जीवन जो है वो इमेजिनेशन में चलता है, कल्पना में चलता है। और भयभीत होते हैं लोग, अलग अलग वस्तुओं से भयभीत होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा विश्वास नहीं होता है। शोक हमेशा परेशान रहते हैं, शोक मतलब दुख मनाते हैं। और मोह, मोह मतलब संसार में डूबे रहते हैं। और विषाद का मतलब होता है ये सोचना कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ ये गलत हो जाएगा, ये व्यक्ति मुझे धोखा देगा, इस तरह से सोचना, ये विषाद कहलाता है। ये धृति जो है ये तामसी धृति कहलाती है। इसके बाद भगवान बताते हैं तीन प्रकार के सुख, तीन प्रकार के कौन कौन से सुख होते हैं जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिनके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत भी हो जाता है। तो ये भगवान 36वें श्लोक से डिस्क्राइब करने वाले हैं, और इस डिस्क्रिप्शन में तीन प्रकार के सुखों को डिस्क्राइब करेंगे भगवान। सबसे पहला जो है 37 नंबर श्लोक में आता है, यत तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ऐसा सुख सात्विक सुख कहलाता है जो कि शुरू में करने में कठिन लगता है और अंत में अमृत के समान है। शुरू में विष के समान लगता है, लास्ट में अमृत के समान लगता है, और जो व्यक्ति में आत्म साक्षात्कार को जगाता है, ऐसा सुख सात्विक कहलाता है। वास्तविकता में जो कोई भी अच्छा कार्य करेंगे तो एक चीज़ उसमें हम देखते हैं, शुरू में करने में आलस आता है, हम सोचते हैं कौन करे इसको। जैसे इवन कमरे की सफाई करना भी एक सात्विक कार्य है, पर साफ सफाई करने में बहुत आलस आता है, लगता है कि कौन करेगा, कल करेंगे। तो कोई भी अच्छा काम करने के लिए मन हमें बहुत आलस प्रदान करता है। तो प्रारंभ में जो सुख विष के समान है और अंत में जो अमृत के समान लगता है वो सुख सात्विक कहलाता है, और ये सुख जो है आत्म साक्षात्कार को देने वाला है। तो सात्विक सुख से लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सुख है राजसिक सुख। राजसिक सुख मतलब इंद्रियों के भोग से जो सुख मिलता है उसको राजसिक सुख बोला जाता है। जो सुख इंद्रियों तथा उसके विषयों के संसर्ग से मिलता है उसको राजसिक सुख बोलते हैं। और ये रजोगुण का जो सुख है शुरू में बहुत अच्छा लगता है और अंत में वो बहुत खराब लगता है, क्योंकि इंद्रिय भोग को जब हम बहुत ज़्यादा अवस्था में करते हैं तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, बुद्धि कमज़ोर हो जाता है, मन भी बहुत वीक हो जाता है, तो फिर हम पाप में डूब जाते हैं। तो शुरू में जब हम वो उस कार्य को करते हैं तब हमें अच्छा लगता है, परंतु धीरे धीरे वो कार्य फिर हमें डुबा देता है। तो शुरू में राजसिक सुख जो है वो अमृत के जैसा लगता है और अंत में वही जो है वो विष के समान लगता है। ऐसे सुख को रजोगुणी सुख बोला जाता है। जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है, इसका उदाहरण, रजोगुण का उदाहरण सामान्यतः स्त्री पुरुष के आकर्षण से दिया जाता है। जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वो विषतुल्य हो जाता है। जब वो अलग हो जाते हैं या उनमें तलाक हो जाता है फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी कहलाता है। जो भी सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वो सदैव सुख का कारण होता है, इसलिए ऐसे सुख से बचना चाहिए। तो ऐसा सुख जो इंद्र कोई भी इंद्रिय और उसके विषयों के साथ होता है वो सुख हमेशा राशि सुख होता है। शुरू में हो सकता है बहुत अच्छा लगे उस सुख को भोग के, परंतु वो क्षणिक होता है, कुछ समय बाद वो सुख का खत्म हो जाता है, वो फिर बाद में विष के समान हमें दिखाई देता है, विष तुल्य हो जाता है। इसलिए ऐसे सुख से बचना चाहिए। तमोगुणी सुख कौन सा होता है कि जो आत्म साक्षात्कार के बारे में तो सोचता नहीं है और शुरू से लेकर अंत तक मोह कारक होता है और नींद आलस्य को उत्पन्न करता है, ऐसे सुख को तमोगुणी सुख बोला जाता है। जिस सुख में आत्म साक्षात्कार के बारे में कोई नहीं सोचते हैं और शुरू से अंत तक वो व्यक्ति डूबा रहता है, इल्यूजन में डूबा रहता है, और व्यक्ति का निद्रा आलस और मोह से उत्पन्न होता है। ऐसे लोग ज़्यादा सोते हैं, आलस और निद्रा में ही सुखी रहते हैं, उनको कोई अनुमान नहीं है कि उनको कैसा कर्म करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब तमोगुण के व्यक्ति के लक्षण हैं। उसके लिए सारी वस्तुएं मोह के समान हैं, तो उसको ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है ना अंत में। रजोगुणी व्यक्ति को प्रारंभ में कुछ सुख मिल जाता है और अंत में दुख होता है, लेकिन तमोगुणी जो है उनको प्रारंभ में भी सुख नहीं मिलता है, अंत में भी सुख नहीं मिलता है, हमेशा उनको दुख ही दुख मिलता है। इसके बाद भगवान बता रहे हैं कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इन तीन गुणों से बचा हो, धरती से लेकर ब्रह्मलोक तक सभी के सभी लोग इन तीन गुणों में फंसे हुए हैं। भगवान ये डिस्क्राइब कर रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग वर्णाश्रम के जो लोग हैं उनमें वो कैसे इन गुणों में आते हैं, और 41वें श्लोक से भगवान बताएंगे कि कोई व्यक्ति सकाम कर्म योग जो करते हैं, जो कि अपने इंद्रियों को भोग करने के लिए काम करते हैं, वो निष्काम कर्म योग में कैसे आ सकते हैं। तो हमने पहले भी देखा था कि अगर कोई व्यक्ति कर्मों के फल को त्याग देता है या कर्मों के फल को भगवान को समर्पित करता है, या शास्त्र में जो वर्णाश्रम के उसके कर्म दिए गए हैं उसके आश्रम और वर्ण के हिसाब से वो कर्मों को करता है, तो धीरे धीरे वो निष्काम कर्म योग में पहुंच जाता है। तो इसलिए भगवान अभी इस सेक्शन में बताएंगे कि वर्णाश्रम में जो अलग अलग वर्ण हैं उनके क्या क्या लक्षण हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की प्रकृति के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा उनको भेद किया जाता है। तो ब्राह्मण के अंदर 9 गुण पाए जाते हैं, ये 42, 43, 44 श्लोक जो है ये मेमोराइजेशन श्लोक है, इसको याद करना चाहिए आपको। समो दमस्तपः शौचम क्षान्तिर् आजवमेव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के ये 9 गुण हैं, समः मतलब समः मतलब शांति प्रियता होता है, समः मतलब मन को नियंत्रित करना, दमः मतलब इंद्रियों को नियंत्रित करना, तपस्या तपस्या मतलब जीवन के आध्यात्मिक विकास के लिए वॉलंटरीली कुछ कठिन कार्य करना, शौचम मतलब स्वच्छता, शांति शांति मतलब सहिष्णुता टॉलरेंस, ब्राह्मणों का ये लक्षण है कि उनको सहन करना सीखना चाहिए, आर्जवम आर्जवम मतलब सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञानम मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञानम मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग जीवन में करना, आस्तिक्यम आस्तिक्यम का मतलब भगवान के प्रति समर्पण होना, उसको आस्तिक्यम बोला जाता है। ज्ञान विज्ञान वास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण के लक्षण होते हैं। मन का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण, तपस्या, स्वच्छता और सहिष्णुता टॉलरेंस और सत्यनिष्ठा हमेशा सत्य बोलना, ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान होना, आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में अप्लाई करना और धर्म धर्म का पालन करना, ये ब्राह्मण के लक्षण होते हैं। क्षत्रियों के 6-7 लक्षण होते हैं, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। शौर्य मतलब क्षत्रियों में वीरता पाई जाती है, तेज बहुत शक्ति पाई जाती है, उनकी शारीरिक शक्ति बहुत होती है क्षत्रियों के अंदर। धृति धृति मतलब संकल्प, क्षत्रिय लोग जो हैं उन वो किसी भी कठिन परिस्थिति में डिगते नहीं हैं, उनके अंदर बहुत दृढ़ संकल्प होता है। दाक्षम दाक्षम मतलब हर विषय में दक्ष होते हैं, पॉलिटिकल सब्जेक्ट मैटर, शास्त्रिक शास्त्रिक विषयों में, हर विषय में क्षत्रिय लोग दक्ष होते हैं। युद्धे चाप्य पलायनम, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, क्षत्रियों को अगर कोई युद्ध में बुलाता है तो युद्ध से भागते नहीं हैं डर के, या तो मरेंगे या मारेंगे, युद्ध से विमुख होकर नहीं भागते क्षत्रिय। और दान देना, लोगों को दान देना, ईश्वर भाव मतलब नियंत्रक नेतृत्व करने की क्षमता क्षत्रियों में पाई जाती है, इसलिए क्षत्रिय लोग जो है वो राजा बनाए जाते थे, राजा बनाए जाते हैं क्योंकि उनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। इसके अलावा वैश्य का जो गुण है, वैश्य के तीन गुण बताए गए हैं, कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, खेती करना, गाय की रक्षा करना और व्यापार करना। तो क्षत्रिय राज्य जो है क्षत्रियों के अंडर में है, गाय के वैश्यों के अंदर में है। तो खेती करना, गाय की रक्षा करना, व्यापार करना, ये वैश्य के लक्षण हैं। और शूद्र के लक्षण हैं कि तीनों, बाकी जो तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उनकी सेवा करना। इस प्रकार से अगर वर्णाश्रम के आधार पे हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों को करते हैं तो सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इस तरह से भगवान अभी बता रहे हैं कि जो लोग इस तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जैसा कार्य करते हैं और साथ साथ भगवान को अपने कर्मों का, भगवान की उपासना करते हैं, वैदिक समय में भगवान की उपासना करते थे, भगवान के लिए यज्ञ करते थे, अपने कर्म का फल भगवान को देते थे, तो धीरे धीरे वो स्वकर्मणाम तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने कर्मों को करते करते सिद्धि को प्राप्त करता है। और शास्त्र इसके लिए बताते भी हैं कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म को करना चाहिए, दूसरे के धर्म को कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव जो है वो उसको दिया जाता है। जैसे क्षत्रिय का स्वभाव अलग होता है, ब्राह्मण का स्वभाव अलग होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो इस तरीके का सिस्टम नहीं है, क्योंकि आजकल कोई स्वभाव के आधार पर काम नहीं करता है। आजकल काम कैसे किया जाता है, किस काम में ज़्यादा पैसा मिल रहा है। आजकल चूंकि पैसा सबका मालिक है, इसलिए कोई स्वभाव नहीं देखता है। हमारा कोई भी स्वभाव हो, पैसा 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 मिलना चाहिए, वो काम हम करेंगे। जबकि वर्णाश्रम ऐसा नहीं था, व्यक्ति के नेचर के आधार पर उसको काम दिया जाता था। और वो सही भी था, क्योंकि जिस जिस व्यक्ति का जो नेचर है उसके आधार पर उसको एंगेज किया जाएगा तो व्यक्ति अच्छे से कर सकता है। अभी इसीलिए कई लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि उनका नेचर इस तरह से नहीं है, परंतु वो काम करते हैं क्योंकि केवल पैसा कमाना है। जैसे माता पिता बच्चों को सभी लोग इंजीनियरिंग में डाल देते हैं, डॉक्टर में डाल देते हैं, चाहे बच्चे की इच्छा हो नहीं हो, उसको करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं था पहले के समय में। पहले के एजुकेशन पद्धति इस तरह से थी कि व्यक्ति के नेचर को पहचान के उसके आधार पर उसको कार्य दिया जाता था, वर्णाश्रम पद्धति में। तो अपने कार्यों को करना बहुत अच्छा है, दूसरे के कार्यों की कॉपी करना अच्छा नहीं है, क्योंकि अपने कार्य जो हमारे नेचर के आधार पर हमारे कार्य हैं उसको करने से हम धीरे धीरे शुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और पाप नहीं लगता है। ऐसा पूरा नियम नहीं है कि व्यक्ति को हमेशा उसी तरह से कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में उदाहरण है। जैसे विश्वामित्र जो थे वो ओरिजिनली क्षत्रिय थे, परंतु बाद में ब्राह्मण बने, ऋषि बन गए। इसी तरह से परशुराम ओरिजिनली ब्राह्मण थे, परंतु बाद में उन्होंने क्षत्रिय जैसा कार्य किया। तो ऐसा परिवर्तन संभव है, परंतु सामान्यतः हम अपने नेचर के आधार पर ही कार्य करते हैं, उस वर्ण के आधार पर। और हमें ये सोच के कर्म को नहीं छोड़ देना चाहिए कि हर कर्म में कुछ ना कुछ दोष होता है। जैसे हम कुछ भी काम करते हैं संसार में, हमेशा परफेक्ट तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ दोष होता है उसके अंदर। तो उस दोष को सोच के हमें कर्म को करना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान बता रहे सर्वारम्भा ही दोष है ना, हर चीज़ दोष में होती है। जैसे हर अग्नि में धुआं निकलता है, उसी तरीके से हम कुछ काम करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ दोष तो होगा। इसलिए काम को छोड़ना नहीं चाहिए, केवल दोष के बारे में सोच के नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे बद्ध जीव में सभी काम भौतिक गुणों से दूषित होता है, ब्राह्मण को भी ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या होती है, क्षत्रिय चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना हो शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, इससे बच नहीं सकता। व्यापारी चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना हो, व्यापार के लिए उसको कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है और ब्लैक मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो शूद्र को कई बार खराब व्यक्ति की सेवा करनी पड़ती है, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों में दोष होते हैं, परंतु तब भी अपने कार्य को करना चाहिए। केवल दोषों को छोड़ के, हमें दोषों की याद करके कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे उदाहरण भगवान ने दिया है, अग्नि, जब भी अग्नि होती है तो धुआं साथ में आता है, भले हम चाहें चाहे नहीं चाहें। तो इसी तरह से कोई भी कार्य करते हैं उसमें कुछ ना कुछ अपूर्णता होती है, परंतु उस कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ तक हमने देखा निष्काम कर्म योग। इसके बाद जो है सेक्शन आता है 49 श्लोक से लेके 55 श्लोक तक। इस सेक्शन में भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से निष्काम कर्म योग से ब्रह्म के स्तर तक आया जा सकता है। 49वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति अगर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर पा रहा है और अनासक्त है तो सबसे ऊंची अवस्था प्राप्त कर सकता है। ऐसी ऊंची अवस्था को प्राप्त करके व्यक्ति का क्या डिस्क्रिप्शन है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से अपने आप को शुद्ध करके, अपने मन को वश में करके, इंद्रिय के विषयों को त्याग कर, राग और द्वेष से मुक्त होकर एकांत स्थान में वास करता है, थोड़ा खाता है, अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, हमेशा समाधि में रहता है, पूरी तरह विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्भ, काम, क्रोध, भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है, वो निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। बहुत कठिन है शायद, मैंने जो पढ़ा आप लोगों को क्लिक नहीं हुआ होगा। ये ऐसे लोगों का लक्षण है जो कि निष्काम कर्म योग से मुक्ति की तरफ जा रहे हैं, मतलब ज्ञानी हैं, उनके मन ये मन अपने वश में है। आध्यात्मिक प्रक्रिया में अगर हम अपने कृष्ण भक्ति के सेंस में देखें तो जब हम भक्ति करते करते बहुत उच्च अवस्था में जाते हैं, भगवान का नाम का जप बहुत अच्छे से करते हैं, भगवान के हमारे हृदय की गंदगी मिटती जाती है, तब ये चिन्ह हमें दिखाई देते हैं। व्यक्ति को खाने से उतनी विरक्ति नहीं होती है, मन वाणी को वश में रहता है, जब भी उसको समय मिलता है भगवान के बारे में चिंतन करना चालू कर देता है, अपने ऊपर घमंड नहीं करता है, और काम क्रोध उसको परेशान नहीं करता है, भौतिक वस्तुओं के मोह से परेशान नहीं होता है, तब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। दूसरे अध्याय में हमने ऐसा एक डिस्क्रिप्शन देखा था, दूसरे अध्याय के लास्ट में वहाँ पे भगवान बता रहे थे कि जैसे नदियाँ समुद्र के अंदर प्रवेश करती रहती, परंतु समुद्र का जल कभी भी बढ़ता नहीं है, समुद्र हमेशा शांत रहता है नदियों के प्रवेश करने के बाद भी। इसी तरह से हमारे मनुष्य के मन में बहुत सारी इच्छाएं आ सकती हैं, परंतु उसको उन इच्छाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जैसे समुद्र नदियों के जल से प्रभावित नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को हमने भगवद गीता दूसरे अध्याय में देखा था, स्थित प्रज्ञ मुनि बोला गया था। और इसके बाद 54 श्लोक जो है ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है कि हमेशा प्रसन्न रहता है और कभी भी शोक नहीं करता है, उसके पास जो वस्तु नहीं है उसके लिए दुख नहीं मनाता है, और नई वस्तु प्राप्त करने की कांक्षा आकांक्षा भी नहीं करता है, इच्छा भी नहीं करता है, तो हमेशा प्रसन्न रहता है, वह किसी खोई हुई वस्तु के लिए शोक नहीं करता है और नई वस्तुओं को पाने की आकांक्षा नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि वो ब्रह्म की अवस्था में पहुंच गया है, उसने संसार को जीत लिया है, संसार से बाहर जा चुका है। ऐसी अवस्था जब किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है तो उसके बाद मद भक्तिम लभते पराम, तब वो व्यक्ति मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। इस तरह से भगवान बताते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वो ऐसी नदी के समान हैं जिनके जल की सारी गंदगी साफ की गई है, क्योंकि वो लोग भगवत भक्ति से पूर्ण हैं, इसलिए उनको भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं होती है, और वो जानते हैं कि सभी जीव भगवान के अंश हैं, इसलिए वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं हमेशा। और भगवान से तादात्म्य स्थापित होने के बाद उनको इस संसार की चीज़ें जो हैं वो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बोलती हैं, इंटरेस्ट नहीं देती हैं। जैसे कोई अगर ऑलरेडी 1 लाख रुपए का जॉब कर रहा हो, उसके पास आप 10,000 रुपये का जॉब लेके जाओ तो बोलेगा ये क्या ज़रूरत है। इसी तरह से कृष्ण भक्ति जो है वो इतना बड़ा सुख प्रदान करती है ऊंची अवस्थाओं में जाने से, कि व्यक्ति भौतिक भौतिक चीज़ों को वैसे भी नहीं सोचता है कि इसकी क्या आवश्यकता है, इस तरह से व्यक्ति सोचता है। वो व्यक्ति सोना और पत्थर को समान समझता है, क्योंकि वो दोनों के अंदर मैटर देखता है, उसको पता है कि संसार की सारी वस्तुएं भौतिक हैं और आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है, वो भगवान आध्यात्मिक है, तो उसके लिए सोना पत्थर सब समान होता है। जैसे श्रीमद् भागवत जिन्होंने बोला था, सुखदेव गोस्वामी की निगाह इस तरीके से थी कि वो किसी को देखते थे तो उसके अंदर आत्मा को देखते थे, शरीर को उनको शरीर से उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता था, इतनी ऊंची अवस्था में थे। तो ऐसे लोग जो उनकी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं, उनके लिए इंद्रियां ऐसे सांप बन जाती हैं जो कि उस सांप के विष वाले दांत चले गए, विष के दांत काट लिए गए हैं। विष के दांत का क्या मतलब है? भोग करने की इच्छा, भोग करने की इच्छा खत्म हो गई। जैसे सांप को अगर हमने उसके विष वाले दांतों को काट लिया तो फिर सांप के कुछ नहीं होता है, केंचुआ जैसा हो जाता है, फिर उसके साथ खेल सकते हैं क्योंकि उसके विष के दांत खत्म हो चुके हैं। इसी तरह से अगर हमने अपनी भोग करने की इच्छा को खत्म कर दिया, सेवा की इच्छा को बढ़ा दिया, तो दैट मीन्स फिर हम संसार में शांति से निवास कर सकते हैं, क्योंकि भोग की इच्छा हमारे अंदर नहीं है। तो ऐसे भक्त जो हैं वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, भक्ति को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म भूत बन जाते हैं वो, ना तो शोक करते हैं ना कांक्षा करते हैं, तब उनकी भक्ति प्रारंभ होती है। इससे पता चलता है कि अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं वास्तविकता में वो भक्ति का प्रयास है, भक्ति नहीं है वो। हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु भक्ति प्रारंभ होती है जब हम मुक्त हो जाते हैं, संसार से मुक्त होने के बाद भक्ति प्रारंभ होती है। तो साधना भक्ति करते करते जब हम एडवांस अवस्था को प्राप्त होते हैं, उन्नत अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो हम मुक्ति को प्राप्त होते हैं, और मुक्ति को प्राप्त होने के बाद हम वास्तविक भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वास्तविक भक्ति भगवान के बीच में प्रेम का आदान प्रदान है। अभी तो प्रेम का आदान प्रदान जैसा हमें नहीं दिखता है, हमारे लिए तपस्या जैसा होता है, सुबह उठना मुश्किल है, भगवान का नाम लेते समय नींद आती है हमें, भगवान के भक्तों में हम बहुत सारी गलतियां देखते हैं। तो अभी हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें कई गलतियां हैं, पर जैसे जैसे हम उन्नत अवस्था में जाएंगे और जब मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे तब भक्ति करना वास्तविकता में प्रारंभ होगा, तब हम भगवान की अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि काम क्रोध लोभ ये सब हमें परेशान नहीं करेगा। अभी ये सब परेशान करता है इसलिए हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं ऐसा भक्त मुझे जान जाता है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्। केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है, भगवान यहाँ बता रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, जिस प्रकार से मैं हूँ उस प्रकार से अगर आप मुझे जानना चाहते हो तो केवल एक ही तरीका है, आपको मेरी भक्ति करना होगा। यहाँ भगवान क्लियरली बता रहे हैं ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा, मुझे जानकर, मुझे तत्त्वतः जानकर आप वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह से भगवान बताते हैं कि भगवान ने हर जगह चारों तरफ योग माया का प्रकाश रखा है ना, हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, केवल भक्त लोग उस प्रकाश को पार करके भगवान को जान पाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण तत्व को जानता है वो वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है, भक्ति के कारण ईश्वर ईश्वर की सेवा करने का भाव व्यक्ति के अंदर आता है, और विसते का मतलब होता है जब वो वैकुंठ के धाम में प्रवेश कर पाता है, भगवान के दिव्य गुणों को जान पाता है और भगवान की सेवा करने का इच्छुक हो पाता है। उस अवस्था में भगवान स्वयं उस भक्त को संरक्षण मेंटेन करना चालू कर देते हैं, उस भक्त की रक्षा करते हैं। अगर कोई भक्त इतनी ऊंची अवस्था में पहुंचता है तो फिर भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, और वो सभी इस संसार में जब तक रहता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं कि उसको कोई पाप नहीं लगता है, वो जो भी कर्म करता है वो तीनों गुणों से मुक्त होता है, और इस शरीर को त्यागने के बाद भगवान उसको अपने धाम में स्वयं लेके जाते हैं उस, क्योंकि उसकी चेतना भगवान में पूरी तरह से लग चुकी है। इसलिए भगवान अर्जुन को अभी उपदेश दे रहे हैं, अभी स्लो चैप्टर ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ जा रहा है, तो भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि तुम सारे कार्य करो और मुझ पे डिपेंड रहो, सारे कार्यों की सफलता के लिए मुझ के ऊपर डिपेंडेंट रहो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। मई संन्यास्य मत परा बुद्धि योगम उपासित मत चित्त सततम भवा, इस भक्ति योग बुद्धि योग के आश्रय लेके मेरे बारे में सोचो और अपनी चेतना को मुझ में लगाओ और अपने कार्यों को मुझ पे मुझको समर्पित करो, और मैं जो बोल रहा हूँ उस तरह से कार्य करो। इस तरह से भगवान अर्जुन को गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि मेरे बारे में सोच के मेरे भक्त बन के जो व्यक्ति कार्य करते हैं, अगर तुम मेरे भक्त बन के कार्य करोगे तो मत प्रसादात तरिष्यति, संसार की सारी कठिनाइयों से तुम मेरे कृपा से तर जाओगे, सारी कठिनाइयों को तुम जीत लोगे, परंतु अगर तुम केवल अपने अहंकार के द्वारा कार्य करोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है 58 श्लोक। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, इन द सेंस अगर तुम मेरे भक्त बनोगे, भक्ति से कार्य करोगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, संसार की सारी समस्याओं को तुम जीत पाओगे, परंतु अगर तुम केवल अपने अहंकार के द्वारा कार्य करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनाश हो जाएगा, विनाश अपने आप को विनाश कर दोगे। इस तरह से भगवान अर्जुन को डरा रहे हैं कि तुम्हें मेरे अगर भक्त बन के कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो विनष्ट हो जाओगे। तो ये आवश्यक है, मित्र का मतलब होता है सच्चाई को बताए, कई बार स्ट्रांगली बताना पड़ता है, तो भगवान इस तरह से अर्जुन को बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान अभी गुरु के जैसा कार्य कर रहे हैं तो क्लियरली बता रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे करोगे तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम मेरे निर्देश के अनुसार कर्म नहीं करोगे और युद्ध नहीं करोगे तो तुम गलत रास्ते पे जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाव बस युद्ध में लगना होगा। भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव युद्ध करना है, क्योंकि तुम क्षत्रिय धर्म से हो, तो तुम अभी मेरे बताने पे युद्ध नहीं कर रहे हो, परंतु बाद में तुम अपने अपनी इच्छा से युद्ध करोगे, तब वो गलत रास्ते पे चले जाओगे तुम, क्योंकि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है उसी आधार पे वो काम करता है, ज्यादा दिन तक स्वभाव को चेंज नहीं कर पाता है वो व्यक्ति, उसी स्वभाव के आधार पे व्यक्ति कार्य करता है। तो भगवान बता रहे हैं कि हमें अभी मैं तुम्हें तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से एंगेज करने का बोल रहा हूँ, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरी बात सुनो और काम करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ, ईश्वर जो है वो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। तो भगवान समझा रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो शरीर भगवान की कृपा से चल रहा है, भगवान सभी के हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, और उनका जो शरीर है वो एक मशीन के जैसा है और भगवान जो शरीर के मालिक के समान है, इस प्रकार से भगवान सभी के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए तुम्हें भगवान के शरण लेना चाहिए, उनकी कृपा से तुम्हें शांति प्राप्त होगी और उनकी शरण में जाने से तुम्हें नित्य धाम की प्राप्ति होगी। सबके हृदय में भगवान जी ने 15वें अध्याय में भी बताया था, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। भगवान ने बताया था कि सभी के हृदय में मैं परमात्मा के रूप में बैठा हूँ। तो भगवान वही बोल रहे कि तुम उसकी शरण में जाओ, उस परमात्मा की शरण में जाओ और उसके प्रसाद से शांति प्राप्त होगी। प्रसाद मतलब कृपा, उसकी कृपा से शांति प्राप्त होगी और तुम्हें आत्म ज्ञान प्राप्त होगा और परम धाम को प्राप्त करोगे। तद विष्णु परमम पदम यदा पश्यन्ति सूर्य, इस तरह से। और अभी भगवान 63, 64 और 65 और 66, ये 4 श्लोक इंपॉर्टेंट हैं। 63 श्लोक में भगवान बता रहे हैं, इस प्रकार मैंने अभी तुम्हें बहुत गोपनीय ज्ञान बताया, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान बताया है। और भगवान यहाँ पे अपना उपदेश पूरा कर रहे हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो मैंने बताया अभी तक उस सब को ध्यान से सोचो और उसके बाद यद इच्छसि तथा कुरु। ध्यान से सोचो मैंने जो बताया और उसके बाद अगर उसके बाद फिर तुम डिसाइड करो कि क्या करना है। तो भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, काउंसलिंग में ये चीज़ हमें सीखना चाहिए। अगर हम किसी को गाइड करते हैं तो हमें उसके ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए कि उसको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। अगर फोर्स करना भी है तो भी हमें प्रेम के साथ करना चाहिए, और जितना हमारा उसके साथ संबंध है उसके आधार पर करना चाहिए। अगर हमारा बहुत अच्छा संबंध है उसके साथ तो हम फोर्स करेंगे व्यक्ति मान जाएगा, अगर संबंध नहीं है हम फोर्स करेंगे तो व्यक्ति नाराज हो जाएगा, संबंध टूट जाएगा। तो भगवान अर्जुन के गुरु के समान हैं, परंतु भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें बहुत अच्छा ज्ञान बताया है तो तुम इस ज्ञान को अच्छे से सोचो, मनन करो, फिर तुम्हारी जो इच्छा है वो करो, यथ इच्छसि तथा करो। तो भगवान हमारी स्वतंत्रता में बीच में नहीं आते हैं। भगवान सब कुछ बता के फिर बोलते हैं कि अभी तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अगर भगवान जबरदस्ती बोलेंगे तो बाद में हम बोलेंगे कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती किया। इसलिए भगवान बोलते हैं कि आप मैं तुम्हें तुम्हें सारा ज्ञान दूंगा, पूरी भगवद गीता भगवान ने बोली, उसके बाद बता रहे हैं कि तुम अच्छे से इसको सोचो और फिर उसके बाद जो इच्छा हो वो करो। इसके बाद भगवान लास्ट में, लास्ट के श्लोक हैं ये, कि अभी मैं तुम्हें जो मैंने अभी तक बताया है उसमें से सबसे ज़्यादा गोपनीय बात बताऊंगा, और वो गोपनीय बात क्या है जो कि 9वें अध्याय में हमने पढ़ा था, वही श्लोक फिर से आने वाला है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माँ मे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान बता रहे हैं कि ये संसार का सबसे, ये 2 श्लोक, 65 श्लोक और 66 श्लोक, ये भगवद गीता के सार हैं। भगवान क्या चाहते हैं हमसे, अगर हम पूरी भगवद गीता नहीं समझ पा रहे हों तो भी ये 2 श्लोक समझने से हमें भगवद गीता समझ में आ जाती है। भगवद गीता क्या बता रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो, और सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस तरह से भगवान बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चय निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। भगवान अर्जुन को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते हैं, इसलिए भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि तुम ये 4 कार्य करो, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, ऐसा अगर तुम करोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे, फॉर इन द सेंस तुम अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त करोगे और मुझे मेरे पास आओगे, ये मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ। प्रति जाने प्रियोसी, मैं तुम्हें ये वचन दे रहा हूँ। इसलिए भगवान की भक्त बनने के लिए ये 4 कार्य जरूरी हैं, भगवान का चिंतन करना, भगवान की भक्ति करना, सेवा करना, भगवान की पूजा करना, भगवान को नमस्कार करना। इतना अगर हम करेंगे तो भगवान के धाम हम जा सकते हैं। इसके बाद भगवान भगवद गीता का सार हमें बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बता रहे हैं कि संसार के जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों का परित्याग करके, सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, क्योंकि मैं सारे धर्मों का मालिक हूँ, मैंने सारे धर्मों को बनाया है। तो भगवान बता रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हारे सारे पापों को मोक्षयिष्यामि, सारे पापों को मैं खत्म कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम चिंता मत करो, मा शुचः का मतलब होता है चिंता मत करो, तुम्हारे सारे पापों को मैं खत्म डिलीवर कर दूंगा। जैसे भगवान के भगवान जब शिक्षा प्राप्त किए थे अपने गुरु के आश्रम में, सांदीपनि मुनि के आश्रम में, तो सांदीपनि मुनि कि पत्नी ने, जब गुरु दक्षिणा का समय आया था, तो सांदीपनि मुनि की पत्नी ने अपने पति से बोला कि ये लोग तो भगवान हैं, इनसे कोई बहुत ऊंचा गिफ्ट मांगना चाहिए। तो गुरु ने ये मांगा था कि उनका एक मरा हुआ पुत्र है, उसको वापस मंगाया था कि उसको वापस ले आइए। तो भगवान ने बोला ठीक है। भगवान समुद्र में गए जहाँ पे वो डूबा था, तो वहाँ पे एक राक्षस, समुद्र ने बताया कि वो वहाँ पे एक पांचजन्य नाम का राक्षस है, शायद उसने उसको खा लिया था। तो पांचजन्य को जाके भगवान ने मारा, परंतु तो उसके पेट में उनका पुत्र नहीं देखा। फिर भगवान यमलोक जाते हैं और यमलोक में जाके अपना शंख बजाते हैं, तो यमराज बाहर आते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं, आरती करते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि मेरे गुरु के पुत्र जो आपके यहाँ पे हैं उनको वापस कर दीजिए। तो यमराज उनको लेके आते हैं और फिर भगवान, यमराज बोलते हैं इन इनके तो बहुत सारे कर्म हैं जिसका फल इनको मिलना है। तो भगवान बोलते हैं वो सारे कर्म माफ़ कर दीजिए। तो भगवान के अंदर शक्ति है, भगवान क्योंकि स्वामी है। जैसे कोई होटल का मालिक आता है अपने मित्र को खिलाने के लिए, कोई होटल का ओनर है वो अपने मित्र को साथ में लेके होटल में खाना खाने के लिए आता है, तो बिल के समय पे वो क्या बोलता है, इनका बिल मेरे नाम पे लिख दो, दैट मीन्स उनका बिल माफ़ हो गया। इसी तरह से भगवान ने बोला कि एक संस्कृत में उन्होंने कुछ चीज़ बोली, मत मत कृते, इस तरह से कुछ बोला यमराज से कि मेरे नाम पे इसका कर्म फलों को ख़त्म कर दो। तो चूंकि भगवान मालिक हैं इसलिए उसके कर्म फल ख़त्म हो गए। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे सभी पापों से तुम्हारी रक्षा करूंगा, चिंता मत करो, केवल मेरी शरण में आ जाओ, माम एकम शरणम रज। इसको भगवद गीता का चरम वाक्य बोला जाता है। साउथ इंडिया में एक मंदिर है वरदराज मंदिर, वहाँ पे आप जाएंगे तो विग्रहों में हाथ के ऊपर, हाथ की हथेली पे इस तरह से लिखते हैं, माम एकम शरणम रज, केवल मेरी शरण में आओ, क्योंकि ये भगवद गीता का मेन इंस्ट्रक्शन है भगवान को शरणागत करना। और भगवान को शरणागति के 6 लक्षण आते हैं। पहला लक्षण होता है अनुकूल्यस्य संकल्पः, भक्ति करने में जो भी वस्तु अनुकूल है उसको स्वीकार करना। प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्, जो भी कार्य भक्ति में प्रतिकूल है उसको त्याग देना। रक्षिसि इति विश्वासः, हमेशा ये विश्वास रखना कि भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, भगवान को अपने मालिक के जैसा समझना। आत्मनिक्षेप कार्पण्यो, आत्मनिक्षेप मतलब कार्पण्य का मतलब विनम्रता। तो ये शरणागति के लक्षण भगवान बताते हैं। इस प्रकार से अगर हम भगवान के शरण इस तरह से अगर हम भगवान की शरण करते हैं, आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन मतलब अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना। ये 6 जो हैं शरणागति के अंग होते हैं। अगर इन 6 अंगों के द्वारा हम भगवान को समर्पण करते हैं तो भगवान हमारे पापों से हमारा उद्धार कर देते हैं। इसके बाद भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस भगवत ज्ञान को सुनता है, भगवत गीता की ये ज्ञान जो हमारे बीच में डिस्कस हुआ है, इसको जो व्यक्ति दूसरों को बताता है वो कितना बड़ा होता है। उसके पहले भगवान बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है जो मैंने आपको बताया, ये उस व्यक्ति को कभी नहीं बताना चाहिए जो ना तो संयमी है, ना भक्ति में है, और ना एकनिष्ठ है, और जो मुझसे ईर्ष्या करता है। क्योंकि अगर हम लोग जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनको भगवद गीता सुनाएंगे तो व्यक्ति और ज़्यादा ईर्ष्यालु करते हैं, भगवान की और बुराई करते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे इस तरह से बता रहे हैं। और भक्तों को जो व्यक्ति ये बात बताता है वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः। ऐसा व्यक्ति जो इस ज्ञान का प्रचार भक्तों के बीच में करता है, बात भक्तों को ये चीज़ बताता है, उससे ज़्यादा इस संसार में ना तो मुझे कोई प्रिय है, ना कोई प्रिय था, ना कभी कोई ऐसा इतना प्रिय होगा। दैट मीन्स भगवद गीता का प्रचार सबसे इम्पोर्टेंट है। इस संसार में ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा मुझे कोई अन्य सेवक ना तो अधिक प्रिय है, ना कभी होगा। और मैं घोषित करता हूँ, ये भगवद गीता का फलश्रुति है, जो व्यक्ति इस भगवद गीता का अध्ययन करता है, मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। दैट मीन्स भगवद गीता पढ़ना मतलब भगवान की पूजा करना। किसके द्वारा? अपनी बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के द्वारा अगर हम भगवद गीता को पढ़ते हैं, दिमाग लगा के भगवद गीता को समझने का प्रयास करते हैं, बहुत गंभीरता से हम भगवद गीता को समझने का प्रयास करते हैं, दैट मीन्स हम अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा कर रहे हैं। बुद्धि से भगवान की पूजा करने से हमारी बुद्धि जो है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है, और बुद्धि शुद्ध होने के बाद हमारे कल्मस खत्म हो जाते हैं, और फिर बुद्धि, शुद्ध बुद्धि आकर्षित हो जाती है भगवान की तरफ। जैसे अगर चुंबक है और एक लोहा है, और चुंबक में लोहा आकर्षित नहीं हो रहा है, उससे क्या समझना चाहिए कि लोहे के ऊपर कुछ कुछ ऐसी गंदगी लगी हुई है, बहुत सारी धूल या ये सब चीज़ें लगी हुई हैं जिसके कारण वो चुंबक से आकर्षित नहीं हो रहा है, मैग्नेट से आकर्षित नहीं हो रहा है। तो उस धूल को अगर हटा देंगे तो लोहा मैग्नेट से आकर्षित हो जाएगा। तो जब हमारी बुद्धि जो है उस पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी, तो भगवान के प्रति प्रेम और आकर्षण अपने आप बुद्धि में डेवलप हो जाएगा। क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं परंतु गंदगी के कारण भूल चुके हैं, काम क्रोध इन सब गंदगी के कारण भूल चुके हैं। जैसे ये गंदगी हटेगी भगवद गीता को पढ़ने से और भक्ति करने से, तो फिर से भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। इसके बाद भगवान अगला श्रुति बता रहे हैं, जो श्रद्धा के साथ और ईर्ष्या के बिना द्वेष रहित होकर इस भगवद गीता को सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पुण्यात्माओं के लोकों में प्रवेश करता है। भगवत धाम भी व्यक्ति जाते हैं, भगवत गीता को पढ़ने से व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, पुण्य लोक पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं। और अभी भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं, सब कुछ बोलने के बाद पूछ रहे हैं कि मैंने तुम्हें जो बताया तुमने ठीक से सुना कि नहीं। दैट मीन्स भगवान तैयार हैं, अगर अर्जुन ने ठीक से सुना नहीं हो तो भगवान फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं कोई कॉन्सेप्ट जो अर्जुन को समझ में नहीं आया हो। तो भगवान यहाँ पे पूछ रहे हैं, हे धनंजय, मैंने जो बोला तुमने ठीक से सुना है, एकाग्रचित्त होकर सुना है कि नहीं, और क्या सुन के तुम्हारा मोह और अज्ञान दूर हो गया कि नहीं हुआ। तो अर्जुन अभी दो श्लोकों में बताएंगे कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरा सारा मोह दूर हो गया और आपकी कृपा से मेरी स्मृति स्मरण शक्ति भी वापस आ गई, अभी मैं तैयार हूँ युद्ध करने के लिए, अभी मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ और आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा, आपके आदेश के अनुसार मैं कर्म करना चाहता हूँ। तो जीव का जीवन का परफेक्शन यही है कि वो भगवान से बोले कि भगवान मैं आपके आधार पर काम करना चाहता हूँ। हम अगर हम इस तरह से भगवान से बोल सकते हैं दैट मीन्स हमारा जीवन सफल हो चुका है। तो अर्जुन भगवान से बता रहे हैं कि अभी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। पहले अध्याय में अर्जुन बोल रहे थे नहीं मैं नहीं लड़ूंगा नहीं कर पाऊंगा, और 18वें अध्याय में हम अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अभी करूंगा। तो अर्जुन के साथ साथ हमने भी जो भगवद गीता पढ़ी है, तो आज हमारे बीच में हमारे मन में भी इस तरह के विचार आना चाहिए कि आज के बाद भगवान का जो भी आदेश होगा वो कार्य मैं करूंगा। जिस दिन पहला अध्याय हमारा चालू हुआ था, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने पूरे अध्याय सुने हैं, जिस दिन हमारा पहला अध्याय शुरू हुआ था उस समय हमारे मन में हो सकता बहुत सारे डाउट हों, पर जिस तरह से भगवान ने गीता बताया और हमने गीता को श्रवण किया सुना पढ़ा, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें भी कन्विंस होना चाहिए कि ये जीवन भगवान की सेवा में लगाना है। लाखों जन्मों में इंद्रिय भोग कर लिया, बहुत कुत्ते बन के देख लिया, सुअर बन के देख लिया, केंचुआ सांप छिपकली सब बन के देख चुके हैं, पर ये जीवन अभी भगवान के लिए लगाना है, ये हमें भगवान विचार सोचना चाहिए और दृढ़ प्रतिज्ञ होके किसी भी संशय से रहित होके भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये भगवद गीता के अंत में हमें इस उपलब्धि को प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद संजय अभी 5 श्लोकों में बताएंगे भगवद गीता जो उन्होंने सुना, क्योंकि संजय से चालू हुआ था कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या हो रहा है ये धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था। तो संजय अभी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि इस प्रकार मैंने कृष्ण और अर्जुन के महापुरुष कृष्ण अर्जुन के बीच की जो बातचीत हुई उसको मैंने सुना, और ये बातचीत इतनी अच्छी है कि सुनने के बाद मेरे पूरे शरीर में रोमांच हो रहा है। संजय भगवान के भक्त हैं, तो संजय ने व्यासदेव की कृपा से सारी घटनाओं को देखा, पूरी भगवद गीता को सुना, और इन महापुरुषों के बीच में इतनी महत्वपूर्ण बात हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी और बाद में भी कभी नहीं होगी। इस तरह से संजय बता रहे हैं कि मैंने इन महापुरुष अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो बातचीत हुई वो जो है इतनी महत्वपूर्ण है कि पहले भी कभी ऐसी बात नहीं हुई थी, भविष्य में भी कभी नहीं होगी। क्योंकि भगवान अपने और अपनी शक्तियों के विषय में अर्जुन से वर्णन कर रहे थे जो कि भगवान के भक्त थे। तो अगर हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन भी सुखी और सफल हो जाएगा। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उनके समझ में आया उन्होंने धृतराष्ट्र को ये बात सुनाई, और संजय फिर एक्चुअली शिष्य का कर्तव्य होता है कि हर क्षण अपने गुरु को समर्पण करे और गुरु के प्रति कृतज्ञ रहे। तो संजय ने वेद व्यास की कृपा से इसको दिव्य दृष्टि को प्राप्त किया था और भगवान के दर्शन किए, भगवान के विशाल रूप के दर्शन किए, पूरी भगवद गीता को सुना। तो संजय अभी अपने गुरु को बोल रहे हैं कि व्यास देव की कृपा से मैंने ये बातें जो कि योगेश्वर कृष्ण भगवान कृष्ण के मुख से जो ये बातें निकली मैंने अपने गुरु व्यास की कृपा से इसको सुना है, और इसलिए मैं अपने गुरु के प्रति नतमस्तक हूँ, और इस वार्ता को सुन के मेरा पूरा शरीर अद्भुत तरीके से गदगद हो रहा है और मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, और जब भी मैं इसको स्मरण कर रहा हूँ तो मेरा पूरा शरीर खुश हो जाता है। भगवद गीता को सुन के इस प्रकार के लक्षण संजय के अंदर आ रहे हैं, हमारे अंदर भी आना चाहिए ऐसे लक्षण। अगर हमने भगवद गीता अच्छे से सुना है और जीवन में अप्लाई किया है, सुन के खुश होना चाहिए। भगवान ने बोला भी है 15वें अध्याय में कि इन इस प्रकार के शास्त्रों को सुन के हमें बहुत मन में बहुत खुशी होना चाहिए कि भगवत धाम जाने की इच्छा होनी चाहिए। तो भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो अर्जुन और कृष्ण के संवाद को जान लेता है पुण्यात्मा बन जाता है, इस वार्तालाप को भूल नहीं पाता। और जब किसी ने गीता को सही स्रोत से या कृष्ण से स्वयं सुनी है तो उनको पूर्ण कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है और जीवन का भोग आनंद सहित हर समय वो आध्यात्मिक सुख का भोग करते हैं। भगवान कृष्ण के रूप का स्मरण करते ही मैं आश्चर्यचकित होता हूँ, बार बार हर्षित होता हूँ। फिर इसके बाद अंतिम श्लोक में संजय बताते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनोधरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नित्य मति मम। जहाँ भी योगेश्वर योग के स्वामी कृष्ण उपस्थित हैं, जहाँ पे अर्जुन उपस्थित हैं, वहाँ पे चार वस्तुएं हमेशा होती हैं। श्री, श्री का मतलब होता है ऐश्वर्य। विजय मतलब वहाँ पे कभी भी हार नहीं होती, हमेशा जीत होती है। भूति, भूति का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, विलक्षण शक्ति, विलक्षण शक्तियाँ, आश्चर्यजनक शक्तियाँ वहाँ पे होती हैं। और नीति, नीति मतलब मोरालिटी, नैतिक प्रिंसिपल। जहाँ भी कृष्ण और अर्जुन उपस्थित हैं यहाँ वहाँ पे ये चार वस्तुएं उपस्थित हैं, श्री विजय भूति और नीति। श्री का मतलब ऐश्वर्य, विजय का मतलब जीत, भूति का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, विलक्षण शक्ति, और नीति का मतलब नैतिक सिद्धांत। तो भगवान जहाँ पे अर्जुन और कृष्ण हैं वहाँ पे हमेशा ये चीज़ श्योर हो गया भगवद गीता के अंत से कि कौरव जो हम खत्म हो जाएंगे और कृष्ण की उपस्थिति से अर्जुन जो है विजयी होंगे। भगवद गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वो भीष्म, द्रोण तथा कर्ण की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान थे। उनको आशा थी कि विजय उनके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने बोला कि आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, परंतु जहाँ पे कृष्ण अर्जुन हैं वहाँ पे आपकी विजय नहीं हो सकती है। वहीं पे कृष्ण अर्जुन जहाँ जिस पक्ष में है उनकी विजय वहीं पे होगी। उसने बताया कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए, विजय तो अर्जुन की ही होनी है क्योंकि उनके साथ कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के साथ ही कपट स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। ऐसे कृष्ण कृष्ण वैराग्य हैं, पूरी तरह से वैराग्य हैं। ऐसे वैराग्य के अनेक उदाहरण हैं। और युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन युधिष्ठिर के बीच में था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता की ओर से लड़ रहा था। चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे इसलिए युधिष्ठिर की विजय निश्चित थी। कृष्ण अर्जुन जहाँ पे थे वहाँ पे जीत निश्चित था। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। तो संजय ने ऑलरेडी भविष्यवाणी की कि युद्ध युधिष्ठिर के जीतेंगे और संसार युधिष्ठिर के हाथ में जाएगा, और युधिष्ठिर विजय प्राप्त करने के बाद संसार को समृद्धि प्राप्त करेंगे क्योंकि वो पुण्यात्मा थे और पवित्रवान थे। तो भगवद गीता का लक्ष्य है, भगवद गीता का फाइनल उपदेश है कि हर मनुष्य को भगवान का भक्त बनना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए और कृष्ण की शरणागति करना चाहिए। सभी धर्मों को त्याग के भगवान की शरण में जाना चाहिए। ये सभी विधियाँ व्यक्ति को शुद्ध करने वाली हैं, परंतु गीता का अंतिम उद्देश्य सभी धर्मों का सार है। भगवान की शरण शरण ग्रहण करो और भगवान को आत्मसमर्पण करो। इस प्रकार से अगर हम भगवद गीता को समझते हैं, भगवान के पांच भगवद गीता के पांच प्रमुख विषय हैं, भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल और कर्म। भगवान, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये भगवद गीता के पांच विषय हैं। तो जो व्यक्ति इन पांच विषयों को समझता है वो भगवद गीता के सार समझ के भगवान को समर्पण करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन को सफलता प्राप्त करता है। तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भगवद गीता का पूरा अध्ययन किया। हालांकि 18 दिन में भगवद गीता समझना बहुत कठिन है, पर तब भी हमने कुछ इस तरह से इसको प्रेजेंट किया है कि आपको भगवद गीता का फ्लो समझ में आ जाएगा। और ये कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आपको अभी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट मैं बताऊंगा कि आपकी भगवद गीता कंप्लीट हो गई, अब आपने भगवद गीता जब से चल रहा था तब से ही आपने पढ़ना चालू किया हो तो बहुत अच्छा है। नहीं तो भगवद गीता का अभी ध्यान से स्टडी करना चालू करिए। और आप में से कई लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या आप हमारे ग्रुप में कई लोगों से कनेक्टेड हैं, तो भगवद गीता पढ़ते समय अगर कोई डाउट होता है तो उस डाउट को बता सकते हैं, उसका उत्तर हम देंगे। पर भगवद गीता को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि संसार में इससे ऊंचा ज्ञान कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अनाउंसमेंट है, परसों 20 तारीख से हम रामायण की कथा प्रारंभ करने वाले हैं शाम को 7:30 बजे इसी गौरंगज ग्रुप यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत अच्छी कथाएं हैं वो, वाल्मीकि रामायण और कंब रामायण से लेके। तो आप सभी का स्वागत है उन कथाओं में गौरंगज ग्रुप पे शाम को 7:30 बजे। हर दिन वो कथा करेंगे और लंबा, एक दिन में लंबा सेशन नहीं होगा, छोटी छोटी सेशन, आधे आधे घंटे के सेशन में हम वो कथाओं को करेंगे। तो आप सभी उसमें आइए। और एक और अनाउंसमेंट है, अध्याय 15 का जो क्विज था, आप सभी ने क्विज में हिस्सा लिया, बहुत लोगों ने क्विज में हिस्सा लिया, तो अध्याय 15 के जो रिजल्ट हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। टॉप 5 में कौन कौन लोग आए हैं वो रिजल्ट मैं बताना चाहता हूँ। 5वें नंबर पे राम राम प्रभु हैं जिनके 82,092 मार्क्स हैं। 4थे नंबर पे हैं सनातन शिक्षा प्रभु, 89,710। सनातन शिक्षा प्रभु हर हर क्विज में टॉप 3 टॉप 5 में हैं, बहुत अच्छा स्टडी कर रहे हैं सनातन सनातन शिक्षा प्रभु, धन्यवाद सनातन शिक्षा प्रभु। तीसरे रैंक पे हैं जेपी शाह, 93,205, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे स्तर पे हैं सोहम, 95,688। सोहम प्रभु पिछले 14वें अध्याय की क्विज में फर्स्ट रैंक पे भी थे और ये भी सनातन शिक्षा प्रभु के जैसे हर क्विज में उनका टॉप 5 में रिजल्ट आ रहा है। और फर्स्ट रैंक पे है, फर्स्ट रैंक पे ऑब्वियसली कृष्णा है, कृष्ण के अलावा और कोई फर्स्ट रैंक पे नहीं आ सकता है, कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभु कहाँ से हैं मुझे अंदाजा नहीं है, मैं केवल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जब अपना नाम लिखते हैं क्विज में तो एटलीस्ट स्थान का नाम लिखेंगे तो हम पता कर सकते हैं। तो कृष्ण प्रभु को फर्स्ट रैंक है 95,742, कृष्णा प्रभु की जय। तो इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भगवद गीता रिजल्ट क्विज में भाग लेने के लिए। बाकी चैप्टर्स के जो क्विज हैं 16, 17, 18 वो क्विजेज हम रामायण के सेशन में हम उनके रिजल्ट्स बताते रहेंगे। तो आप सभी 20 तारीख को हम शाम को 7:30 बजे मिलते हैं रामायण के सेशन में। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।